अगर आप इस पूरे पारे को थोड़ा सा मजीद डिटेल से देखना चाहते हैं, तिलका रसूलु फद्दलना बादहुम अलाबाद, पारे के शुरू से ही पता चलता है कि फितरत का एक खूबसूरत असूल क्या है कि चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। फूल बहुत सारे हैं लेकिन गुलाब के फूल की एक अपनी शान है ना, फूलों की खुशबू का फ़र्क होता है ना, समझते हैं ना आप लोग। जिस तरह फूलों में कोई ज़्यादा हसीन है कोई कम हसीन है, दरख्तों को देखिए किसी के पत्ते कम है किसी के ज़्यादा, तो इंसानों का भी यही मामला है। आप और मैं हैं इंसान, लेकिन कोई बड़ा आला दर्जे का इंसान है तो कोई आम दर्जे का है तो कोई बिल्कुल ही गिरा हुआ है। फितरत का असूल है कि अल्लाह ने लोगों को मुख्तलिफ खूबियाँ दी, किसी को एक अच्छी खूबी दी किसी को दूसरी दी, तकाबुल नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, बाज़ लोग चीज़ों को देख कर अपने अंदर को खूबी देखें तो बड़ाई के दावे करने लगते हैं और दूसरों को देखें तो शख्सियत परस्ती में आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसी बात को पारे के आगाज़ में पेश किया कि अपने दौर के अंबिया कराम चुने हुए लोग थे, लेकिन बाद के उम्मतियों ने उन्हीं का नाम लेकर टुकड़ों में बांट लिया खुद को। मसीह ईसाई ईसा के चाहने वाले, क्रिश्चियन नसारा, तीनों का ताल्लुक हज़रत ईसा से है ना, यहूदी यहूदा की तरफ नस्बत है। शख्सियत में खो गए, हम मोहम्मदी नहीं हैं, वी आर नॉट मोहम्मडन्स, हम कौन हैं, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। शख्सियत परस्ती की जड़ काट दी अल्लाह ने पारे के शुरू में कि तुम अल्लाह के साथ जोड़ो, अल्लाह का नाम है अस्सलाम, तो तुम कौन हो, अल मुस्लिम। गलूफ कहाँ होता है, जब हम शख्सियत में खो जाते हैं। कल तक नबियों के साथ लोगों ने यह किया था, आज लोग आइमा कराम के साथ करते हैं। तुम किस इमाम के मुकल्लद हो, तुम किसके हो। चलिए इमाम साहब की बात जो अपने दौर के थे गुजर गए, तो उससे अगली बांट शुरू हो जाती है, किस फिरके से हो, किस जमात से हो, किस घूम से हो। तो बात ये है, नामों में ना खो, किरदार साजी करो, किरदारों में ना खो। आज नबी का नाम लेकर मुसलमान झूमते हैं, क्या कहते हैं उनको, धमाल डालते हैं, लेकिन नबी के अमलों पर कोई नहीं है, नबी का मिशन कोई नहीं है। वो मुहसिन इंसानियत है, हम तो अपने लिए भी मुहसिन ना रहे। नबियों ने, आइमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने इल्म के लिए ज़िंदगियां लगा दी, आज हम इल्म से दूर हैं। हम कहते छुट्टियां और उसमें पढ़ें, और वो भी सिर्फ दीन पढ़ें। अभी देखिए अगले महीने से समर कैंप शुरू हो जाएंगे स्कूलों में, फिर भारी ट्यूशनें दे देकर समर कैंप्स में बच्चे जाएंगे ना, साइंस और पढ़ लें, केमिस्ट्री और पढ़ लें। एक टेस्ट दिलवाने के लिए हम अपने बच्चे को कितनी भारी ट्यूशन पर पढ़ाते हैं, ये बातें कोई नई तो नहीं मैं कर रही। एक बच्ची को मेडिकल तक पहुंचने से पहले जितने मरहले हैं वो करवाते हैं कि नहीं कराते हैं? किराया लगता, फीस देनी पड़ती है, किताबें लेनी पड़ती हैं, कभी चीखें निकली, दिल में खुश होते हैं, शुक्र अल्लाह ने दिए हैं बच्चे, तभी तो उनके ये खर्चे उठा रहे हैं। लाड देखते हैं, चौ देखते हैं। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला, आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले की बात है, हमारी फैमिली का एक बच्चा बाहर गया था डेंटिस्ट बनने, तो ज़ाहिर है उसको कहाँ से आना था, पीछे से ही गया था। तो मुझे मुबालगे से भड़क के ना बात कर दूँ, ऐसी बात में जब बात हुई तो करोड़ों में खर्चा आया उसके मेडिकल का, एक डेंटिस्ट करोड़ों खर्च करवा के माँ बाप का डेंटिस्ट बना। अभी बेचारा कब कमाएगा, कब हाउस जॉब और कब वो इंटर्नशिप होंगी, वो तो बाद के खाते हैं ना। करोड़ रुपया लगता है एक डॉक्टर के बनने पर बिलफर्ज, तो उस बच्चे के आलिम बनने में, मुत्तकी बनने में और मोहसिन बनने में कितना लगना चाहिए, ये पारा सिखा रहा है मुझे आपको आज। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में दिल छोटा ना करो, अल्लाह देख रहा है तुम्हें, उसको पता है सामने क्या और पीछे क्या छुपा हुआ है। फिर इसी तरह से शख्सियात में खोती कब है उम्मत, जब इल्म दूर हो जाता है। आज उम्मत झगड़ों का शिकार है, वजह यही है आज इख्तलाफात हैं और बहुत सारी मुश्किल बातें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि असल बात यह है, झगड़े कब होते हैं, जब मसल मकसद पे नज़र नहीं रहती। याद कीजिए दूसरे पारे का शुरू, वक़ज़ालिक जालनाकुम उम्मतन वसतन, और तीसरे पारे का शुरू झगड़े, जब उम्मत मुस्लिमा ने भी उम्मत वसत का किरदार ना पहचाना तो वो फ़िरकों में बट गए। आज सिर्फ फ़िरकों के नाम पर कोई नहीं आता, बिलीव मी, किसी ने यहाँ तक कहा कि ये क्लासरूम में इसलिए नहीं आ सकते कि इसके साथ एक दूसरे मसलक की मस्जिद है। ज़रा सोचिए, मैं आपको हकीकत बात कर रही हूँ, मेरे कान तक पड़ी है, गलत है कि सही है, आपकी बात नहीं है किसी की होगी। ये क्लासरूम जो आपको अल्लाह ने यहाँ दिया है, इधर किसी को आने की इजाज़त नहीं, कि इसके पहलू में एक ऐसी मस्जिद है जिस सोच से उनको इख्तलाफ है घर वालों को, तो भाई इधर रोटी वाला भी है, इधर तंदूर भी है, रोटियों का भी इनकार कीजिए, चक्की भी है साथ उसका भी इनकार कीजिए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। भाई हमारा नसीब इस कमरे में था मस्जिद से, आपको मुझे क्या लगे? क्या आप सिंध में के घर के साथ स्कूल लेते तो फिर आप बेटी को बीवी को बहू को भेजते? इसको कहते हैं कि उम्मत का वबाल, आज इल्म का शौक नहीं है, आज है तो ये नखरे हैं, भूख नहीं है ना इल्म की। जब बच्चे को भूख नहीं होती आप जो मर्जी खिला दे नहीं खाएगा, आज हमें हिदायत की भूख नहीं है, इल्म की भूख नहीं है, इतने नखरे हम कभी ना करते। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ये, दूर है करीब है, गर्मी है सर्दी है, समर है मेहमान आए हैं, ये है, और अब ये मसले कि आपके हमसाए वाले लोगों से हम नहीं मैच करते, तो आप क्या चाहते हैं? किधर बंदा दीन का काम करे? याद रखिए ये सिर्फ बहाने बरह बहाने, हमें अपनी मौत याद नहीं है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस बारे में ये सिखा रहा है, मकसद तो देखो, कल तुमने अपनी कब्र में जाना है, तुम्हारी कब्र के साथ वाली कब्र किसकी है ये देखो, किस कब्रिस्तान में तुम्हें दफन किया जाएगा। और ये बातें इल्म के साथ नहीं होती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि समर एक ऐसा खूबसूरत मौका होता है कि हमारे बच्चे भी थोड़े रिलैक्स्ड हैं, रोज़ की रूटीन टूटी होती है, बाहर का अगर शहर है जैसे बाहर के मुल्कों से जो सुनते हैं तो बाहर का वेस्टर्न स्टाइल बहुत ज़्यादा बच्चों के जहन पे है, माओं को थोड़ी सी उससे निजात मिल चुकी होती है। अगर समर में हमारे बच्चे बच्चियों ने और हमने दीन नहीं सीखना तो सॉरी टू से दैट, अल्लाह को दिलों का पता है, वी आर नॉट सीरियस। बस हम ये चाहते हैं बस बच्चे सीधे साधे मुसलमान हो जाएं, 5 नमाजों में 4 भी पढ़ लें तो बढ़िया है, फिर इस दीन के पौधे पे अभी 1-2 नस्ल तक तो बाहर कोई नहीं आनी। अल्लाह ताला आप पे मेरे पे रहम करें। इमाम बुखारी की माँ ने इमाम बुखारी को 17 या 18 साल की उम्र में शहर के सारे उस्तादों से इल्म दिला दिया था। वो एक शहर का इल्म लेकर फिर दूसरे शहरों में सफ़र कर करके इल्म के लिए जाते थे। आज सफ़र करके इल्म के लिए कोई आ भी जाए आपके मेरे पास तो हम कहते हैं कि नहीं अभी तो हमारे पास काम ही बड़े हैं, इससे बड़ी भी कोई नाकदरी हो सकती है? आपकी बात नहीं कर रही लेकिन अमूमी मिजाज यही है, आज दीन के नाम पर मिजाज यही है। उसके बाद देखिए हमने सब ने रोज़े रखे, हम सब अपने आप से पूछें कि जिस मकसद के लिए रोज़े आते हैं वो मकसद हासिल होता है? क्या रमज़ान तकवा देके गया मुझे आपको? और तकवा होता तो इल्म की मोहब्बत होती, और अगर इल्म की मोहब्बत है तो मुबारक है आप सबको कि आपके अंदर तकवा आ गया। अगर रमज़ान ने आपको मुझे सब्र दिया है तो सब्र आ चुका है, और क्या रमज़ान में मेरे दिल का बुखल ख़त्म कर गया? अल्लाह की रहमतों को कैसे हमने गिरते देखा अपने ऊपर, फिर दिल में से अगर बुखल ना गया तो ज़्यादती की बात है। क्या मैं सिर्फ चंद शख्सियतों के नाम पर दीनदार तो नहीं हूँ? क्या मेरा दीन किसी शख्सियत के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ कि वो नाम हट गया तो मेरा दीन चला जाएगा? ये भी याद रखिए, जो लोगों को देख कर आते हैं ना वो लोगों को देख कर चले भी जाते हैं। मकसद पे नज़र रखिए, आपको इधर आके मिल क्या रहा है ये मत देखिए कौन दे रहा है, ये देखिए दे क्या रहा है। अगर अच्छी चीज़ है आपके फ़ायदे की ले लीजिए। असल बात है कि इंसान को ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि इसको दीन की रूह समझ आ जाए, और वो रूह कुरान खोले बगैर समझ नहीं आती। फिर आगे देखिए आए 254 से सूरत बकरा के तकरीबन आखिर तक, आखिरी रुकू को छोड़ दीजिए, माल की बातें, खर्च खर्च खर्च। क्या पता चला कि बंदा दुनिया में जो कुछ भी लेकर आता है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है? आप में से किसके घर रिसेंटली बेबी पैदा हुआ हुआ है ना बेबी, आप गवाह हैं उसके पैदा होते वक्त उसकी मुठियाँ खुली थी कि खाली थी या बंद थी? कुछ लेके आया था? खाली हाथ आता है, जब आए तो खाली हाथ। और किसी की फैमिली में क्लोज सर्कल को डेथ हुई है आजकल में? किसी को डेथ बेड पे देखा जी? कुछ लेके गए साथ? ये है दुनिया, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए। कहते सिकंदर आजम ने कफन में से हाथ बाहर निकलवा दिए थे, वसीयत कर गया था कि मेरे हाथ बाहर रखना लोगों को पता लग जाए, आधी दुनिया फतह करने के बावजूद मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, पीछे आप 1 करोड़ छोड़ जाएं तो भी आप कब्र में ही जाएंगे, 10 करोड़ छोड़ जाएं, 8 छोड़ जाएं, या 10 लाख भी ना छोड़ें, 10,000 भी ना छोड़ें, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। कभी वाक्या सुना सकी डिटेल से तो सुनाऊंगी आपको। उम्र सानी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक एक दिरहम सिर्फ अपने 12 बेटों के लिए छोड़ के गए थे। वाक्य बड़ा लंबा है जो बाद में कभी सुना दूंगी जब आपके नसीब में होगा। اس کے برعکس اس وقت کا خلیفہ اپنے ایک ایک بچے کے نام کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ گیا. لیکن یہ بات لکھنے والے نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ اس اللہ سے ڈرنے والے شخص جس نے ایک ایک درہم چھوڑا اپنے بچوں کو, ان کے بچوں کو اللہ نے بعد میں اور کتنا دیا, اور وہ دین کے کتنے بڑے وارث بنے. اور وہ جو کروڑوں کی جائیدادیں اپنے بچوں کے نام چھوڑ گئے, انہوں نے باپ کی عزت کیسے رسوا کی گلی گلی. آپ کو کیا لگے پیچھے بچوں کو لاکھ چھوڑ گئے یا کروڑ چھوڑ گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں, خرچ کرو, انفق انفق انفق, خرچ کرو, انفق انفق, جو مرضی بول لیجئے, خرچ کرو خرچ کرو. کس میں سے؟ مما رزقناکم, ہم نے تو تم کو دیا, اللہ نے دیا آپ کو مجھے. اور یہ بھی نہیں کہتے سارا خرچ کر دو, مما اس میں سے جو ہم نے دیا, یعنی کچھ دے دو, ہمارا ہی تو دیا ہوا ہے اور ہمارے ہی نام پہ خرچ کیا جائے, ضائع نہیں ہوگا. لیکن ہوتا کیا, دل گھٹنے لگتا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ میں دے دوں گی تو میرا تو مال تھوڑا ہو جائے گا. دل کے اندر بخل آتا ہے, دل کے اندر مال کی محبت بھر جاتی ہے. مال نہیں دے سکتے, دل تنگ ہوا, ہائے میں کیوں دوں, تو اللہ آیت الکرسی لے آتے ہیں, اللہ لا الہ الا ہوا, آؤ میرے خزانوں کو دیکھو, میری ذات کو دیکھو, میری ذات کی اگر تمہیں معرفت مل گئی تو پھر مال لے لے کر پھرو گے کہ اللہ قبول کر لو. سچ ہے کہ جھوٹ؟ آیت الکرسی پڑھتے وقت دماغ سے زیادہ دل کو سامنے رکھیں, ارد گرد سے بالکل بے نیاز ہو کر سوچیں کہ یہ کس کی بات ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. رات کو پڑھ کر سوئیں, ساری رات شیطان نہیں پھٹکتا. ایک آیت کے اندر اللہ کے 25 نام اور صفات ہیں کم از کم, اور اللہ کا اپنا نام اللہ شعور سے پڑھ لیں تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. آپ کے میرے دل کی کیوں نہیں بدلی؟ دن میں 5 بار فرضوں کے بعد آیت الکرسی ہے نا, سونے سے پہلے آیت الکرسی, اور اللہ کے 25 نام دن میں 25 دفعہ ضرب لگا لیجئے ہر دفعہ پڑھنے کو, 5 سے 10 سے کئی 100 بار اللہ کے نام لے کر بھی ہمیں اللہ کے خزانوں کا یقین نہ آئے تو کب آئے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری, جس کی قدر نہیں ہوتی نا ہم اس پہ خرچ نہیں کرتے. صوفے کی قدر ہے ہم خرچ کریں گے, 50,000 کے لاکھ کا بھی وہ دیں گے. بیٹیوں کے جہیزوں میں دینے چھوڑ دیے صوفے لوگوں نے, کیا بھی بڑا مہنگا ہو گیا, دیتے ہیں. گاڑیاں خریدنی چھوڑ دیں, سونا, چلے سونے کی بات کر لیں, سونا 1,00,000 روپے تولا بھی ہو جائے گا نا لوگ پھر بھی لیں گے. بیٹی کو دینا ہے, عزت کٹ جائے گی, ساس کو کڑے نہ ڈالے تو بیٹی کو دانے دے گی, ہے نا, قدر ہے نا. اللہ کہتا ہے تم میرے نام پر, تمہیں ایسی بے قدری لگتی ہے, اور دیا بھی میں نے ہی ہے تمہیں. دیکھیے آپ کو جس نے چیز دی ہو, مثلا فون آپ کو شوہر نے دلایا اور پھر کہتے ہیں ذرا دینا مجھے فون, میں ایک کال کروں, تو آپ کہتے ہیں کیوں دوں, تو اگلی دفعہ تو نہیں دیں گے وہ آپ کو. ہم کتنے بخیل ہیں اللہ کے معاملے میں, شرم آ رہی ہے مجھے پڑھاتے ہوئے بھی, سچی بتا رہی ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے یہ اللہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں سب کچھ, آپ کو پتہ نہیں کیا لگ رہا. پھر آپ دیکھیے آیت 258 سے اگلی آیتوں میں 3 واقعات, خلاصہ کیا ہے کہ جب دل میں شک آتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. کسی انسان کے دل میں خوف بھی آتا ہے, کسی کو اللہ کی قدرت کے بارے میں مغالطہ لگ جاتا ہے, لیکن اللہ سچے ایمان والوں کو بھٹکنے نہیں دیتا, اندھیروں میں نہیں چھوڑتا, اس کو بچا لیتا ہے شک سے, تردد سے. اور وہ ایسے وقتوں میں اگر تھوڑا سا ڈاواں ڈول بھی ہو جائے نا, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پہ مدد کر دیتا ہے, وہ اندھیروں میں نہیں رہتا, روشنی میں آتا ہے. ہماری نظریں اللہ پر لگنی چاہیے, اور جو اللہ پہ نظریں لگائے گا خود بخود اللہ اس کے دل کو کھول دے گا. دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. پھر نمرود کی بات ہے, جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا, اس وقت کی سپر پاور تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کے دلائل دیے تو حیران رہ گیا, لیکن دل سے نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ دل سے مانتا تو اللہ کو ماننا پڑتا, کیونکہ اللہ سے تو وہ چھوٹا ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کیا, لیکن اس کو حیران تو کیا. لیکن جب دل میں تعصب ہوتا ہے, سمجھ گئے نا, تعصب, عصبہ کہتے رسی کو, تعصب رسیاں ہیں جو بندھی ہوئی ہیں مسلکوں کے نام کی, گروہوں کے نام کی. जब दिल में तासुब होता है तो बंदा कोई बात भी सुन ले, मानता कोई नहीं है, क्योंकि वो उसके गिरोह से नहीं होती, उसके मसलक से नहीं होती। ऐसे शख्स को कभी सच्ची बात समझ नहीं आती। अगर आप इस कुरान को जिस वक्त सुन रहे हैं ना, सही रंग में समझना चाहते हैं ना, दिल की तख्तियों को खाली कर ले। लिखे हुए पेपर पे लिखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये दिलों में जो पहले ही तासुब है उस गिरोह से, उस जमात से, उस फिरके से, उस मसलक से, कुछ नहीं कुरान समझ आता। बचपन से जो बातें सुनी सुनाई हैं, माँ बाप से सुनी, बड़ों से सुनी, इनको पीछे रखिए, दिन ब दिन जगह बनाइए। खाली दिल के साथ जहाँ आया करें, देखें फिर आपको क्या मिलता है। अल्लाह का कलाम खाली दिलों पे असर करता है। काले कपड़े पे तो कोई रंग भी नहीं चढ़ता। हमारे दिल तो पहले ही काले हुए हैं, अपनी ज़ात, बिरादरी, ख़ानदान, बड़ों से। बचपन से जो तरीके सीखे वही हैं, बचपन से जो तौर तरीका था वही था। दुआ करें कि अल्लाह जब तेरा कलाम मेरे सामने हो तो मुझे हिदायत दे दे। ये कितनी बदबख्ती है, पढ़ने के बाद भी हिदायत ना आई तो कब आएगी। देखिए, रंग में भिगो दिया कपड़ा, निकाला फिर कोरे का कोरा, तो कब रंग चढ़ेगा उस पर। दुआ करें अल्लाह कल तक तो मैं हिदायत से दूर थी, आज तो ये किताब मेरे सामने है, पढ़ के गुमराह ना करना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वा हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी नल हक का हक्कम वरज़ुकना इत्तबाऊ, अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखाओ और फिर उसको मानने की तौफीक भी दे, और बातिल को बातिल करके दिखाओ और उससे रुकने की तौफीक भी दे। याद रखिए, बहुत सारे लोगों को हक नज़र आ जाता है, उनका दिल कहता है ये जो काम हो रहा है सच्चा, लेकिन तअस्सुब की वजह से कबूल नहीं करते। इसमें वाक्य है, हज़रत सफ़िया का बाप और चचा दो यहूदी आलिम थे। कहती है मैंने अपने बाप और चचा की चुपके से बातें सुनी थी एक रात, और वो आपस में यही बातें कर रहे थे। दोनों भाई बैठ के, सुनाओ ये जो शख्स आज नबी बन के आया ये सच्चा है? कहता सच्चा। ये वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में? कहा वही है। कहा अच्छा, फिर तुम्हारा इरादा क्या है? कहा मेरा इरादा यह, जब तक मेरी जान में जान है मैं इसकी मुखालफत ही करूँगा। क्यों? कहा इसलिए कि अगर मैं सरदार मान गया तो सारे ही मान जाएंगे। तो भाई ने कहा अच्छा, फिर भाई तेरा ये इरादा है तो मेरा भी यही इरादा है। देख लीजिए, अल्लाह ने बेटी को महातुल मोमिनीन में शामिल कर दिया और बाप को हिदायत ना मिली। तो दिल साफ करके कुरान सुनिए। तासुबात की वजह से वैक्स लग जाता है दिल पे, रंग ही नहीं चढ़ता। बीच की रुकावटें हैं, इनको दूर करवाइए, क्योंकि हिदायत बड़ा कीमती सौदा है। आप मैं यहाँ हिदायत लेने आते हैं रोज़। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ कबूल हो रही है हमारी आपकी। सारी दुनिया की दौलत मिल जाए और हिदायत से महरूम है तो मुफलिस और कल्लाश है, क्योंकि सांस निकलते ही जहन्नुम के फरिश्तों ने आ जाना है रूह को लेने के लिए। अल्लाह आपका मेरा बुरा अंजाम ना करे। फिर आयत 269 है, हिकमत की बात है। वो मैं यूतल हिकमत फ़कदूत या खैरन कसीरा। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ हिकमत से मुराद है माल को कहाँ खर्च किया जाए। ये भी बड़ी प्यारी बात है, ज़रा सी तवज्जो दीजिएगा। बास दफ़ा हम अपनी जान छुड़ाने के लिए माल लगा देते हैं, जहाँ चंदे का डब्बा देखा उसमें डाल दिया। इसको अगर आप इस ज़मीन की मिसाल से समझें, जिसमें किसान बीज डालता है, तो क्या किसान वैसे जाके बीज डालाता है? पहले चेक नहीं करता कहाँ की ज़मीन जरखेज़ है, कहाँ चावल उगता है, कहाँ की ज़मीन पे गंदम उगती है? देखते ना, फिर उसके बाद वहाँ हल चलाता है, ज़मीन को उलट पुलट करता है, करते ना। फिर आप देखिए मेहनत करता है तो बीज डालेगा तो फसल आएगी ना। आप मैं खर्च कहाँ करें, इसके लिए भी अल्लाह से हिकमत मांगी है। कहीं आप खर्च करते हैं ना, आपको एक के बदले में 70 मिलेंगे, बस लीस्ट वादा अल्लाह का 10 गुना है। कभी आप करते हैं ना तो आपको 70 की जगह 700 मिलेंगे, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप अगर एक खर्च करते हैं तो 70,000 मिलते हैं। ज़रा सा अपने ज़कात को, सदके को, अपने दिल की खुशी से खर्च करने को सोचा करें, कहाँ लगा रही हूँ, कहाँ लगा रही। बाज़ लोग तो अपनी ज़कातें भी पकड़ कर अपनी मासियों के तोहफ़ों में दे देते हैं। वो सोचती हैं भाजी फयाज़ बड़ी है, तनख्वाह तो 2,000 देती है, हर महीने ऊपर से 5,000 दे देती है, उसको क्या पता बाजी अपना बर्रा टाल रही है। मासी के ऊपर भी रोब डाल गया कि बाजी बहुत पैसा देती है ऊपर से, और अपनी ज़कात भी अदा हो गई। बास पकड़ कर इधर से उधर दे दिया, कहते हमने तो दे दिया। नहीं, जान छुड़ाने के लिए ना दीजिए, अल्लाह का रास्ता। ये माल ज़रा पूछिए आपका एक एक पैनी पैसा कहाँ लगता है। ये तो जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनसे गवाही आज भी लीजिएगा, बाद में भी लीजिएगा। एक एक रुपया कैसे बचता है और बचाया जाता है, इस पर इंशाल्लाह क़यामत के दिन सुर्खरू होंगे, ये मुझे यकीन है। ये बरकत ही उसी की है, किसी के पैसे को कभी ये सोच के नहीं ज़ाया किया कि माले मुफ्त दिले बेरहम, क्योंकि ये अमानत है। जो लोग बाहर से देते हैं मुझे तो उन पर रश्क आता है, जो देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी आज तक इन जगहों को, इन क्लासरूम्स को देखा ही नहीं जहाँ हम बैठ के पढ़ाते हैं। सारी दुनिया में क्लासरूम्स हैं और बाहर से सुनने वाले अंधा इतमाद करके देते हैं। अल्लाह करे क़यामत के दिन वो अपना अजर देख कर हैरान ही हो जाए, और हमें तौफीक दे कि अगर हमारे सामने ही चले कोई चीज़ किसी की आती है तो हम उसकी गवाहियाँ दें कि अल्लाह ताला इन्होंने लगाया हक के साथ और हमने हक के साथ इस्तेमाल किया। आज दीन के पौधे पे बहार क्यों नहीं है, कभी आपने सोचा? खर्चे बहुत हैं, आता बहुत है, आगे से खर्चों में निकल जाता है, हमारे तो खर्चे ही कोई नहीं है। अल्लाह की रहमत से ही है जो चल रहा है। तो याद रखिएगा कि माल वहाँ लगाइए जहाँ आपको एक से कम अज़ कम 70,000 से ऊपर मिले। करंट अकाउंट्स में डालिए ताकि रोज़ का रोज़ खर्च हो जाए, कल से ही पौधा शुरू हो जाए लगना। कुछ दूरस प्रोजेक्ट हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो माल को ज़ाया नहीं करना, ये मुराद है, जान नहीं छुड़ानी। आप अपना एक एक रुपया भी ज़ाया नहीं करते, जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो पहले उसकी वैल्यू देखते हैं कि इतने की है कि नहीं है। अल्लाह ताला इस आयत में बिल्कुल यही मिसाल देते हैं। अल्लाह से दुआ मांगे कि मैं ऐसी जगह खर्च करूं जहां से सदका जारिया की फसलें उगती रहे। और इन आयतों पे आकर एक बहुत ही पर्सनल चीज़ याद आ जाती है, बस अल्लाह उसको सच कर दे, यही कहती हूँ। बंदा सोचता भी नहीं और अल्लाह उसको वो कुछ दिखा देता है। याद रखिए, दीन की खेती पे खर्च करना, फसल उगाना, हर चंद महीने बाद वहाँ से फसलें कटती जाएंगी और आगे खेतियाँ तैयार होती जाएंगी। सॉलिड काम, साउंड काम, जहाँ से खेती तैयार हो। बेवकूफ़ है वो किसान के बीज तो बखेर दे और पता ही नहीं कि वो नाले में गिरा, कि वो किसी कूड़े के ढेर पे गिरा, या वो किसी जरखेज़ ज़मीन पे गिरा। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला हमें इधर सिखा रहे हैं। फिर आयत 267 में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दूसरों को नापाक और गंदी चीज़ देने का इरादा ना करो, अगर कोई तुम्हें ये दे दे तो तुम तो आंखें बंद कर लो। ज़रा सा सोचिए, कभी कभी हम अल्लाह के नाम पर लोगों को वो देते हैं कि अगर कोई हमें दे तो हम जिल्लत के एहसास और दुख की वजह से आंखें मीच लें कि इसने मुझे ये दिया। ये है मुरव्वत का बुखल। एंड पे समअप करूँगी इंशाल्लाह, मौका मिल जाता है तो, कि मुरव्वत का बुखल आज हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। अपने घर के मुलाजमों से मामला करके देख लीजिए कैसा बुखल है। आप किसी के साथ जो कर रहे हैं, क्या आप पसंद करते हैं कि आपके साथ भी वैसे किया जाए? चंद सवाल तो लिखिए मुहासबे के। नौकरों के साथ मामला करते वक्त जो मेरा रवैया होता है, क्या मैं पसंद करती हूँ कि मेरे साथ भी कोई वैसे ही करे? मसलन कैसे? आप देखिए, उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं दी जाती, काम ज़्यादा लिया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, मुलाजमों को ताज़ा खाना देने के बजाय बासी खाने दिए जाते हैं, क्या ये बुखल नहीं है? बखील लोगों की पहचान क्या होती है? उनका घर कूड़े कबाड़ से भर जाता है, जमा करते रहते हैं, दूसरों को नहीं देते, डब्बे भी संभाले हुए, बोतलें भी संभाली हुई, ढक्कन भी संभाले हुए, घर कबाड़ खाना बन जाता है। कोई मांगे तो कहते नहीं, चुप करो, मेरे काम आएगा। कपड़ा भी दिया तो बटन नोच के, दुपट्टा उतार के, डोरियां उतार के, नुचा पुचा जोड़ा मासी को दिया, हातम ताई की कब्र पे लात मारी, नहीं ये काम आएगा, और करते भी ये सारा किफायतशारी के नाम पे। फिर इसी तरह देखिए, वक्त का बुखल होता है। जिस काम में जितना वक्त लगाना चाहिए उतना ना लगाना। मसलन चार फर्ज नमाज में कितना वक्त लगाते हैं? 10, 5 या 2, 4 मिनट। फिर आप देखिए, छोटी-छोटी बरतने की चीज़ों में बुखल होता है। याद रखिए, इसी बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी की तामीर होती है, हमारी शख्सियत बनती है। अगर आपने, मैंने कुरान से सिर्फ तर्जुमा पढ़ना होता तो काफ़ी देर का हम पढ़ चुके होते। अपने अंदर से बुखल निकालने के लिए तीसरा पारा पढ़ रहे हैं। आपकी मासियाँ बोलें कि बाजी आप क्या पढ़ के आती हैं, कि आपने तो मुझे वो गर्दन की बोटी और पर देने की बजाय आज लेग पीस दे दिया। पहले तो आपकी जान निकल जाती थी, हाय मासी को खाना देते हुए लेग पीस, और वो भी जो आज पका, 2 दिन पुरानी फ्रिज से दाल निकालो, और बड़ा भी जोश आ गया ना तो ढूंढ के अंदर से पर निकालते हैं, और सेब दिया तो वो अंदर जो एक आधा कटा फटा, ये लो ये खा लेना। आपके बच्चे तो चार खा लें, आप ना रोकें, फिर भी आप कहेंगे बच्चे खाते कोई नहीं। तो उस गरीब को आपने एक सेब, एक आम, एक खरबूजा, एक केला दिया, सड़ा हुआ। ये बुखल है कि ये आपकी क्या चीज़ है? जो पकाते हैं उनके सामने आप देखिए कि खुद खाते हैं और उनको 2 दिन पुराना खिलाए, और अगर मासी कह दे मुझे ताज़ा खाना दे, हम कहेंगे देखो दिमाग देखो इनका, बेगम साहबा बनती हैं, ख़राब हो गया दिमाग। तो माजरत के साथ आपका दिमाग ख़राब है जब रोज़ फ्रेश खाने खाती हैं? ख़राब दिमाग वाले फ्रेश खाने खाते हैं? मासी का दिमाग ख़राब हो गया अगर वो कहती बाजी ताज़ी रोटी दे दे, मेरे दांत में दर्द है, मैं नहीं खा सकती कल की रोटी। आप कहते हैं लो बेगम साहबा इनके नखरे देखो, आप इनको गर्म रोटी खिलाओ। ये बखील है, बहुत बड़ा बुखल है, इससे बचना है इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा दीजिए गरीब को, अल्लाह और दे देगा आपको। और दो चार का बचा खाना सारा इकट्ठा एक प्लेट में डाल ला, मासी को का खा लो। और आपके बेटे को आपने इतना बड़ा बर्गर 260 रुपये का ला के दिया, उस बेचारे घुपले मुपले ने दो चार बाइट खाई, कुछ खाई, हार बना के रखा, पकड़ के कहा मासी को जाओ ये बच्चे को दो अपने खा ले। अगर आपने अपने बच्चे के लिए एक बर्गर लिया है तो कभी मासी के बच्चे के लिए भी ले लीजिए, वो भी तो वहीं खड़ा है, दिल उसका भी आपके बच्चे की जैसे। और अल्लाह रहम करे पिज़्ज़ा बनाया हो, पिज़्ज़ा मंगाया हो, और आ जाए मेहमान, छुपा दो इसको, और वो छुपता कोई नहीं है, ना पिज़्ज़ा छुपता ना इश्क मुश्क छुपता। और अगर पिज़्ज़े में कैप्सिकम डली हो तो फिर तो मेहमान भी कहेंगे खुशबू कहाँ से आ रही है, आप कहते वो हमसायों से आ रही होगी। और बच्चे अंदर डर रहे होते हैं कि अम्मा ने जो कहा था छुपा दो, तो ये पिज़्ज़ा तो घुल रहा है कि नहीं है, बखील है कि नहीं है। यकीन कीजिए कि अगर हम अपने नौकरों की नज़र से ख़ुद को देखें ना, तो टक्के बराबर इज्जत नहीं होगी उनके दिल में, हमारी पता नहीं कितनी को है, हमारे दिल में अपनी कोई नहीं रहेगी। तो ये बुखल है मासियों और गरीबों और ड्राइवरों ने। कभी आप बासी खा लें, कभी वो खा लें, दोनों रखिए। मैं ये नहीं कहती आप सारा ताज़ा उनको दे दें और मियाँ के सामने दूसरा ले आए, क्योंकि जी बुखल का सबक पढ़ा है। आप खाइए बासी खाना, ये वो तो मुर्गी की सारी टांगे जो हैं वो मैंने दे दी मासी को, ये भी बेवकूफ़ी है। देखिए इसमें से ढूंढिए, आगे आपको एंड पे सिखाएंगे अमल की बातें इस बारे में। मैं यो तल हिकमत फ़कदूत या खैरन कसीरा, किसी की बात बड़ी अच्छी है कि कुछ तो अल्लाह को भी ऐसे तरीके से देते हैं कि अल्लाह को उनको अदर देना ही पड़ता है, वो इतने प्यारे तरीके से अल्लाह के रस्तों में देते हैं। तो मांगिए हिकमत, अल्लाह मेरा माल मैं अच्छा इस्तेमाल करूँ। फिर इसके बाद आप देखिए कि दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल से बुखल को निकाल दे। फिर इसी तरह एक इलाज और कर सकते हैं अपने बुखल का, ये सोचिए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाऊंगी कितनी शर्म आएगी। उस रुसवाई को याद कीजिए जो बखील के लिए अल्लाह के नबी के हदीस से मिलती है। फिर इलाज करना है ना अपने बुखल का, तो इस तरह इलाज कीजिए कि जो रिस्क अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है वो मुझे मिल के रहेगा, और जो मेरे नसीब में नहीं है और मैं खुद से अपने हाथ से किसी को दे भी नहीं रही, वो वैसे ही गिर जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा, तो क्यों ना अपने हाथ से दे दूँ। फिर इसी तरह एक हदीस है कि हर रोज़ सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ देता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन, अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, और दूसरा आता है और वो कहता है अल्लाह रोक लेने वाले का तू भी रोक ले, बर्बाद कर दे बखील का माल, तो उस बददुआ को याद कर ले। बखील को रोज़ सुबह उठ के फरिश्ते की बददुआ मिलती है कि अल्लाह इसका रोक ले। इसीलिए आप अपने खानदानों में देखिए कुछ लोगों का हाथ इतना खुला होता है, सारी ज़िंदगी दे ही रहे हैं, हालांकि कारोबार भी गए, फिर भी अल्लाह ने आज तक उनको कमी नहीं दी। और जो कंजूस होते हैं वो सारी उम्र का कमज़ोर माड़ा, क्योंकि दिल छोटा है, जो देगा उसको और मिलेगा, जो नहीं देगा वो उसी में पड़ा रहेगा। फिर इसी तरह से ये भी याद रखिए कि देते वक्त सोचें कि शायद मैं आखिरी बार दे रही हूँ, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलना, तो अच्छा दे दूँ, इसके बाद तो मौत की कश्ती पे बैठ जाऊंगी, तो बेहतर है आज ही दे दूँ, मरने तो लगी हूँ। देखिए कभी आप मूव हुए हो ना तो आप इस चीज़ को सीखेंगे, सफ़र बहुत सिखाता है, मैंने बहुत सीखा अपने सफ़रों से। आखिरी दिन आप अपनी हर चीज़ देने को तैयार होते हैं, और अगर एयरपोर्ट पे सामान ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त जो गुस्सा आता है आपको अपनी चीज़ों पे और उन तोहफ़ों पे जो किसी ने आपको दिए, दिल करता है यही फेंक दें, हर वक्त जाने का सोच लें, दुनिया में ही दे दीजिए, बाद में तो फेंकना पड़ेगा, लोग तो फेंक देंगे। और ये भी तो सोचिए ना कि आज मैं देने वाली हूँ, कहीं कल लेने वाली ना बन जाऊँ। और एक आखिरी बात करके मुहासबे पे चलाती हूँ, और वो क्या है कि जन्नत की नेमतों को याद कर लें। ये दुनिया में क्या चीज़ें हैं जिसमें हम रीझे हुए हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़, तो नेमतों को याद करें। चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं अपने मुहासबे की, क्या मैं अपने नौकर को कभी कुछ पैसे उधार दे दूं, मतलब उसकी ज़रूरत थी, तो वापसी का तकाजा करने लग जाती हूँ। क्या गुंजाइश होने के बावजूद भी नौकर के छुट्टी करने पर उसकी तनख्वाह में से पैसे तो नहीं काटती? क्या कभी वो मजबूरी की हालत में अगर पहले से ही एडवांस में तनख्वाह मांग ले तो क्या बाद में उसको काटती हूँ या सदका कर देती हूँ? क्या मैं अपने मुलाजिमों को तनख्वाह टाल टाल कर देती हूँ या वक्त पर देती हूँ? क्या मैं छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदते वक्त दाम कम करवाती हूँ? अगर दाम कम कराने हैं ना तो ब्रांड्स में खड़े होके कपड़ों के करवाएं, ब्रांडेड चीज़ों के करवाएं, राडो की घड़ी ख़रीदते हुए जाकर बार्गेन कीजिए। और क्या अकेले वाले से आपने 10-20 रुपए कम कराने हैं? याद रखिए, बहुत बड़ा बुखल है ये रेडी वाले गरीब मस्कीन आम इतने महंगे, छोड़ो हम तो नहीं लेते। वो बेचारा अगर आपको 100 रुपये किलो दे रहा है, आप कहते नहीं 80 दो, आपने 20 रुपये कमा कर क्या ले लिया? हो सकता है उस गरीब की 20 रुपये की दिहाड़ी बनती हो। रिक्शे वाले से दाम करवाते हैं, किराया लेते देते वक्त झगड़ा करती हूँ, ये भी लिखिए। देखिए, अगर तो कोई ज़्यादती करता है, 10 लोग आम बेच रहे हैं, उसमें से 8 लोग 100 रुपये किलो बेचते हैं और 2 जो हैं वो 150 रुपये बेचते हैं, तो आपको हक पहुँचता है कि आप 150 वाले से मत लें, 100 वाले से ले लें। वो तो बात ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े पैसों पे धनिए की गुच्छी साथ दे दो, ये तो मुफ्त लेते हैं, और ये मिर्चें भी साथ दे दो, पुदीना भी चाहिए, मुफ्त में मांगना है। आप ज़रा वर्दा दुकान से जाकर एक जोड़ा ख़रीदें और साथ मुफ्त की शर्ट मांगें, ऐसी घूरी मारेगा। वर्दा का नाम इसलिए लिए कि कल मैंने उसे देखा है बाहर कहीं, आपके शहर में आ गई है वो भी बाजी। कितना इंतज़ार है ब्रांड्स का हमें इधर, कैसे बाहर से मंगवाते हैं ना, शॉपिंग करनी मुश्किल है। कभी उधर जाके किसी ने कम कराया? और छोटे छाबड़ियों वालों से 2-2, 4-4 रुपये कम कराते हैं, इतने दूंगी मैं तो, इतने दूंगी, और वो गरीब बेचारा उसका बिकरा नहीं। आप देखिए ना, केले वाला जो खड़े होते हैं बाहर, अगर सारा दिन ना बिकेंगे तो शाम को उसके साथ क्या जाएगा? आधे भी नहीं जाएंगे, गल जाएंगे, तो और ले लीजिए। किसी का वाक्या पड़ा था कि गोरमे बेकरी से निकले, अपने हाथों में इतने बेकरी के डब्बे लिए हुए, तो एक बाबा बुड्ढा बेचारा पसीने से शर्ट भरी तो भिंडियाँ बेच रहा था। तो कहते मुझे तरस आ गया कि इस गरीब की भिंडियाँ और गर्मी इतनी है। मैंने कहा बाबा कितने की हैं? कहते लगा 100 रुपये किलो। कहते मैंने कहा मुझे 2 किलो दे दो। 200 दी तो इसने 500 रुपये का नोट दिया, तो उसने कहा बाबा पहले गाहक हो आप सुबह के, मेरे पास खुला नहीं है, मुझे खुले दे दो। तो ये ब्रदर कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि इसको कहता हूँ रख लो, ऐसे ही रख लो। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो उसकी अना पे चोट पड़ेगी और बुरी बात है, उसको आदत पड़ेगी। मैंने कहा बाबा ऐसा करो 3 किलो और भिंडियाँ भी दे दो। जब उसने तोली, पूरी रेड़ी 5 किलो ही की थी। इसने कहते मैंने सोचा कि सुबह से गर्मी में बैठा है, मैं इसकी सारी खरीदूँ ताकि ये घर जाए ठंडा हो। कहता मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी, बाबे की खुशी से हालत ख़राब है, 5 किलो भिंडियाँ इसको पकड़ाते हुए नोट हाथ में लेके कहता भाई एक बात तो बताओ, वाकई तुम्हारे पास खुला नहीं था इसलिए मेरे से 5 किलो की ली है या मेरे पे रहम खाया है? कहता बाबा कुछ भी समझ लो। कहता फिर एक और सवाल का जवाब दो, ये 5 किलो भिंडियों का करोगे क्या? और अगर बेगम वो लड़ाकी उसे कहता इतनी भिंडियाँ ले आए, मैं तो पहले ही चिपकी हुई चीज़ें हैं। कहते वहाँ से आया, घर आया, बेगम को कहा कि बेगम, बेगम भी डर गई होगी, हाय इतना काम आ गया। कहने लगा मैंने एक लिफाफे लाओ, इसके पैकेट बनाओ और गली के जितने गरीब घर हैं ना उनमें भिंडियाँ बांट दो। ये है नेकियाँ करने के बेहतरीन तरीके। वमई यो तल हकमत फ़कदूत या खैरन कसीरा। तो छोटे छोटे दुकानदारों और गरीब मेहनत मजदूरी करने वालों से कभी कम ना कराएं, बड़ों से कराइए। बड़ों पे तो हम बोलते ही नहीं हैं, मत कहिए यस यस वी नो नेक्स्ट नाइ, और इससे भी बड़ा ब्रांड दिखाओ। अल्लाह हम पे रहम कर दे। चलिए, क्या मैं अल्लाह के रास्ते में कपड़े देते हुए इसमें से कीमती चीज़ें उतार लेती हूँ? ये अब आप खुद सोचिए, जब मासी को जोड़ा देते हैं तो उसमें से क्या उसको देते हैं और क्या निकालते हैं, और कहते हैं हम कितने किफ़ायतदार, ये बेटी का बनाऊँगी, ये बेटी को लगा के दूँगी, ये मैं करूँगी, वो करूँगी। आप बस ये देख लीजिए कि उसके दिल को खुशी होगी उस जोड़े को लेकर या दुखी हो जाएगी। फटा हुआ जोड़ा दे दिया, सी के दे दीजिए, गंदा दे देते हैं कई लोग, धोखे दीजिए, इस्त्री करके कलफ लगा के उसको ऐसा दीजिए कि उसके हाथ में दें तो एकदम उसको अपनी इज्जत तो महसूस हो। پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے بہت سارے اشارے ہیں، خود سے پوچھئے کیا میں بخیل تو نہیں ہوں. اگر زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں سے بخل کو نکالنا ہوگا. اور یہ شیطان کے وعدے ہیں کہ دو گے تو کم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم دو گے میں اس سے زیادہ کر دوں گا، فائدہ بھی تم کو ہی ہوگا. ایک شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت اچھی نہیں لگتی، خوف بہت آتا ہے، کوئی طریقہ بتائیں کہ مجھے موت سے ڈر ختم ہو جائے. کہنے لگے اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ کے رستے میں آگے بھیجنا شروع کر دو. جہاں بندے کا مال ہوتا ہے نا، وہاں جانے کو دل کرتا ہے. تو جب تمہاری پسندیدہ چیزیں آگے پہنچ جائیں گی تو تمہیں موت کا سوچ کے خوشی ہوگی کہ سامان پہنچ چکا ہے، میں نے بھی پہنچنا ہے، آپ اور میں یہ کر لیں.